संयुक्त राष्ट्र समाचार महबूब खान से 27 सितंबर 2018 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा, यरूशलम नहीं है पिकाऊ, पूर्वी यरूशलम ही रहेगी फिलिस्तीन की राजधानी। मानवाधिकार परिषद ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के दमन की जांच के लिए बनाया एक स्वतंत्र मैकेनिज्म। और महासभा की जनरल डिबेट के दूसरे दिन ज्यादातर वक्ताओं ने किया मल्टीलैटरलिज्म का जोरदार समर्थन। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राष्ट्र के बिना मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से बुधवार को अपने संबोधन में महमूद अब्बास ने विशेष जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी पूर्वी यरूशलम ही होगी। महासभा के 73वें सत्र के दौरान विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने शांति और दो राष्ट्रों के रूप में समाधान के लिए अपना संकल्प भी दोहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये समाधान बातचीत के रास्ते से ही हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसराइलियों के साथ एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए हमेशा ही एक सकारात्मक नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तालमेल बनाए रखा है। इसमें अरब शांति पहल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ भी उनका कार्यकाल शुरू होने के समय से ही संपर्क बनाए रखा है। महमूद अब्बास ने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका सरकार ने तीन बहुत विवादास्पद घोषणाएं और फैसले किए, जिनसे न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रस्तावों का उल्लंघन होता है, बल्कि उनसे दो राष्ट्रों के रूप में समाधान की संभावनाओं और कोशिशों की अहमियत भी कम होती है। इनमें वॉशिंगटन में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO का कार्यालय बंद करना, यरूशलम को इसराइल की राजधानी घोषित करना और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम ले जाना शामिल हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का कहना था,
अल-कुद्स लैस
जेरुसलम इज नॉट फॉर सेल
व हुकूक अश-शअब अल-फिलिस्तीन
एंड द फिलिस्तीनियन पीपल्स राइट्स आर नॉट अप फॉर बार्गेनिंग। Peace be upon you, and we will maintain our faith in peace.
यरूशलम बिकाऊ नहीं है और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के बारे में कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। अस्सलामु अलैकुम, आप सभी के लिए सलामती की दुआ। हम शांति में अपना भरोसा कायम रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है और हमारा लक्ष्य न्यायसंगत है। फिलिस्तीनी लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के शब्द। उनका कहना था कि शांति का रास्ता संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रस्तावों में दिखाया गया है। इनमें प्रस्ताव संख्या 67/19 शामिल है, जो 29 नवंबर 2012 को जोरदार बहुमत से पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में 1967 की सीमाओं के आधार पर एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की बात कही गई है। महमूद अब्बास ने तमाम देशों से आग्रह किया कि वो इन प्रस्तावों पर अमल करते हुए एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के लिए अपना समर्थन और सहयोग जारी रखें। जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म का गठन किया है। इस मैकेनिज्म यानी व्यवस्था के तहत म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाने की संभावना होगी। इस तरह का एक प्रस्ताव गुरुवार को मानवाधिकार परिषद में पेश किया गया, जिसे इस्लामी सहयोग संगठन OIC और यूरोपीय संघ ने एक साथ मिलकर पेश किया था, जो अपनी तरह का पहला ऐसा प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 35 वोट पड़े, 3 वोट विरोध में पड़े और 7 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में ऐसी व्यवस्था बनाने की पेशकश की गई है जिसमें म्यांमार में 2011 के बाद से अति गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने के मामलों के सबूत इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया जाए। इन अपराधों में 2017 में रखाइन प्रांत में चलाया गया रोहिंग्या मुसलमानों के दमन का अभियान भी शामिल होगा। म्यांमार की सेना द्वारा चलाए गए इस दमन अभियान के बाद करीब 7.5 लाख रोहिंग्या लोग सुरक्षा के लिए भागकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। साथ ही काचीन और शान प्रांतों में भी बड़े पैमाने पर ऐसे ही अपराध होने की खबरें मिली हैं। इस नई व्यवस्था से ऐसे सबूत इकट्ठा करके दस्तावेज रिकॉर्ड तैयार करने की उम्मीद की गई है जिनके आधार पर जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं पर किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में निष्पक्ष और न्यायसंगत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके। ये मुकदमा संभवतः म्यांमार की उन वरिष्ठ सैनिक हस्तियों और सुरक्षा बलों के सदस्यों पर चलाया जाएगा जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किए गए एक जांच दल की रिपोर्ट में सामने आए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के दूसरे दिन बुधवार को विभिन्न वक्ताओं ने व्यापार से लेकर जलवायु परिवर्तन और विकास से लेकर बीमारियों का मुकाबला करने के मुद्दों का जिक्र करने के साथ साथ मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुलवाद पर भी खास जोर दिया। मल्टीलेटरलिज्म दरअसल एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलने, उनकी राय को अहमियत देने और एक साथ मिलकर विभिन्न लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। इसे सहकारिता या बहुपक्षवाद भी कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस विशिष्ट मंच से विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण झलकने के साथ साथ छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों, विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्राध्यक्षों और सरकार अध्यक्षों ने राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुलवाद पर आधारित एक वैश्विक व्यवस्था की जोरदार हिमायत की। इटली के प्रधानमंत्री जिज़प्पे कोंते का कहना था कि आज के बिखरे हुए, बहुध्रुवीय और लगातार बदलते वैश्विक परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और ज्यादा असरदार मल्टीलेटरलिज्म की जरूरत है। साथ ही शांति, न्याय और समानता पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में एक ज्यादा मजबूत संयुक्त राष्ट्र की भी आवश्यकता है। उधर क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डाइज कैनेल ने ऐलान के अंदाज में कहा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और व्यवस्थागत समस्याओं का टिकाऊ समाधान निकालने के लिए मल्टीलेटरलिज्म पर अमल करना बहुत जरूरी है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों और नियमों को पूरी तरह से सम्मान देते हुए उन पर अमल करना भी आवश्यक है, तभी एक बहुध्रुवीय, लोकतांत्रिक और समानता पर आधारित विश्व की संकल्पना को आगे बढ़ाया जा सकता है। अनेक मामलों में तो ऐसा लगा कि बहुत से वक्ता अपने अपने देशों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे कि उनके देशों के सामने क्या क्या चुनौतियां दरपेश हैं और उनके देशों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन बहुत से नेता अपने संबोधन के दौरान बहुत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीलेटरलिज्म की जरूरत के मुद्दे पर आ जाते थे। नामीबिया के राष्ट्रपति डॉ हेगे गीनगॉब ने कहा कि विश्व धीरे धीरे ऐसा स्थान बन गया है जहां एकतरफा कार्रवाइयों का चलन बढ़ रहा है जो कि बहुत खतरनाक और चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये चलन लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई है। साथ ही लोकतांत्रिक सिद्धांत समावेशी और भागीदारी वाले टिकाऊ विकास के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण ये बहुत जरूरी है कि मल्टीलेटरलिज्म को बिना और देरी किए तुरंत अपनाया जाए। घाना के राष्ट्रपति नाना अफूको अड्डो ने व्यापार के क्षेत्र में मल्टीलेटरलिज्म की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षण जब हम इस महासभा में अपनी बात रख रहे हैं तो विश्व की दो महाशक्तियों अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी है। इस व्यापार युद्ध के दुष्परिणाम उन देशों को भुगतने पड़ेंगे जिन्हें इस मामले में अपनी राय तक रखने का मौका ही नहीं है। ऐसे देशों में छोटा सा देश घाना भी है। इस तरह की घटनाएं ये साबित करती हैं कि इस दुनिया में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्रोएशिया की राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रेबर कितारोविक ने भी मल्टीलेटरलिज्म की जरूरत में अपनी आवाज शामिल की। उनका कहना था कि मल्टीलेटरलिज्म इस समय बहुत दबाव का सामना कर रहा है क्योंकि इंसानियत से संबंधित अति महत्वपूर्ण समस्याएं कोई भी देश अकेला हल नहीं कर सकता, इसलिए मल्टीलेटरलिज्म आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति आंद्रे किस्का ने कहा कि मल्टीलेटरलिज्म कोई बहुत आसान रास्ता भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया को आगे ले जाने का यही एकमात्र रास्ता बचा है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस लोहाननीस ने युवाओं, सिविल सोसाइटी, पत्रकारों और कारोबारी लोगों तक ज्यादा पहुंच बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि मल्टीलेटरलिज्म और वैश्विक नेतृत्व के लिए इन सभी की बहुत जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन सभी वक्ताओं ने मल्टीलेटरलिज्म का समर्थन या हिमायत की हो। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज दूदा ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि मल्टीलेटरलिज्म का हर समर्थक इसका संदर्भ देशों के बीच समानता के बारे में नहीं ले सकता। उनका कहना था कि कोई ये भी कह सकता है कि नकारात्मक मल्टीलेटरलिज्म भी तो मौजूद हो सकता है, जहां सत्ता का इस्तेमाल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जाता है और दूसरे इंसानों के भाग्य और भविष्य के बारे में उनकी भागीदारी के बिना ही फैसला कर लिया जाता है। यूरोप और पोलैंड इस तरह के नकारात्मक मल्टीलेटरलिज्म के शिकार होते रहे हैं पूरी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान और दूसरे विश्व युद्ध तक। पोलैंड के राष्ट्रपति ने देशों के बीच समानता पर आधारित सकारात्मक मल्टीलेटरलिज्म स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कमजोर देशों को अतिरिक्त अवसर दिए जाने की भी हिमायत की, जिनमें वोट के अतिरिक्त अधिकार और महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्थाओं में ज्यादा प्रतिनिधित्व शामिल हो। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेला डी सूजा ने एक पक्षीय विश्व व्यवस्था के मौजूदा चलन की भर्त्सना करते हुए कहा कि हम एक पक्षीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वित्तीय योगदान देने से पीछे हटने के चलन की निंदा करते हैं। ऐसे देशों और लोगों में राजनीतिक संकीर्णता होती है, जिसमें सदियों पुरानी गलतियां दोहराने का खतरा बना रहता है। अफ्रीकी देशों सहित अनेक नेताओं ने मल्टीलेटरलिज्म के प्रति अपना संकल्प व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाए जाने का आह्वान किया, खासतौर पर सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाने की मांग करते हुए अफ्रीकी और अन्य विकासशील देशों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद में ही अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जाते हैं जो कानूनी तौर पर बाध्य होते हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही, अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।